इस यज्ञ की स्थापना की और आज ये यज्ञ वट वृक्ष की तरह इतना फैल चुका है जो भारत और भारत के बाहर 140 देशों में बाबा की शाखाएं हैं, हमारे सेवा केंद्र हैं और कैसे बाबा के अनेक बच्चे, लाखों बच्चे उसमें नियमित विद्यार्थी बन के लाभ लेते हैं और हमारे जैसी हजारों बहनें इसमें समर्पित रूप से बाबा की सेवाएं कर रही है। तो पिता श्री ब्रह्मा बाबा कौन थे और कैसे उन्होंने यह यज्ञ आरंभ किया वो हम कुछ चित्रों के माध्यम से देखेंगे। और मेरा भी यह सौभाग्य रहा कि ब्रह्मा बाबा से मैंने बहुत पालना ली, क्योंकि मैं 1959 में 11 साल की उम्र में ज्ञान में आई। जन्म 48 का है, 59 में ज्ञान में आई और 69 18 जनवरी बाबा ने अपना देह त्याग किया। तो 10 साल तक बाबा के बहुत करीब रही। अबू भी 2-3 बार आई इन दिनों, इन वर्षों में। और बाबा तो हर साल मुंबई आते थे, मैं मुंबई की हूँ तो हर साल बाबा मुंबई तो आते ही थे, खास करके सर्दी के दिनों में क्योंकि यहाँ बहुत ठंडी होती थी। तो डॉक्टर्स की सलाह पर किसी गर्म स्थान पर जाने के लिए उनको कहा जाता था तो बाबा बॉम्बे आते थे। तो कौन थे पिता श्री ब्रह्मा बाबा, इनका पूर्व नाम क्या था और कैसे परमात्मा ने इनको अपना माध्यम बनाया और इनका नाम ब्रह्मा रखा। ब्रह्मा रचयिता के रूप में हम मानते हैं कि सृष्टि के आदि पिता ब्रह्मा, जिसके द्वारा भगवान ने सृष्टि रची। तो ब्रह्मा कोई और, कोई चार मुख वाला ब्रह्मा नहीं, लेकिन है तो मनुष्य रूप ही, परंतु जब परमात्मा ने उनमें दिव्य प्रवेश किया तो ईश्वरीय ज्ञान चारों दिशाओं में फैला। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में यह ज्ञान फैला, तो इसीलिए चार मुख दिखाते हैं ब्रह्मा के, ये चार दिशाओं की निशानी है। तो वास्तव में ब्रह्मा बाबा कौन थे और कैसे एक लौकिक जीवन से प्रजापिता ब्रह्मा कहलाए। तो पिता श्री ब्रह्मा बाबा जिन्होंने एक बीज रोपा, आज हम देख रहे हैं ये वट वृक्ष की तरह, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो पांचों द्वीपों में फैल चुका है और देश विदेश के लोग माउंट आबू आते हैं। तो पिता श्री ब्रह्मा बाबा का लौकिक नाम दादा लेखराज था, लेखराज दादा। दादा सिंध में बड़े भाई को दादा कहते थे, तो सिंधी लोग बड़े भाई को दादा कहते हैं और बड़ी बहन को दादी कहते हैं। हिंदी में तो दादा दादी माना ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, लेकिन सिंधी भाषा में दादा माना बड़ा भाई या दादी माना बड़ी बहन। तो हम जानते हैं कि कैसे यहाँ हम दादी भी कहते हैं, दादा भी कहते हैं, यानी बड़े भाई बड़ी बहन के लिए ये कहा जाता है। परंतु बाबा का जो जीवन था बहुत ही ऊंच जीवन था और प्रसिद्ध हो गए लखीराज बाबू के नाम से। बचपन तो बाबा का गांव में बीता, बाबा कहते हैं ना मैं गांव में पैदा हुआ था। श्री कृष्ण के लिए नहीं कहेंगे गांव में पैदा हुआ था, वो तो राजकुमार था, लेकिन पूर्व जन्म में कैसे साधारण स्वरूप में बाबा गांव में पैदा हुआ था। इनके जो पिता थे वो एक गांव के स्कूल के हेडमास्टर थे, तो बचपन से ही कोई इनको पढ़ाई का कोई शौक नहीं था, सच पूछो, बिजनेस का बड़ा शौक था। तो फिर भी कैसे भी करके जैसे बड़े हुए तो भाई के साथ धंधे में लग गए, लेकिन बहुत उदार दिल थे। तो भाई ने सोचा ये पता नहीं क्या धंधा करेगा और ये फायदे के बदले घाटा ना कर ले, है ना, उदार दिल जो होता है ना, जैसे 10 के बदले 15 दे देगा, लो कोई बात नहीं। तो भाई के पास तो था लेकिन उदार दिल था। तो फिर बाबा को आया कि मैं अपना धंधा खुद करूंगा। तो कहां एक साधारण व्यक्ति साधारण परिवार से और कहां वो एक बहुत बड़ा जवाहरात का धंधा करने वाला जवाहरी बन गया, हीरे जवाहरातों का धंधा करने लगा। और किस प्रकार बाबा के जो ग्राहक थे वो उस समय के राजाएं महाराजाएं थे, भारत में बहुत राजाएं महाराजाएं थे और अंग्रेज भी थे, तो वे बाबा के ग्राहक थे। कलकत्ता में उनकी बहुत बड़ी दुकान थी और पार्टनर तो कलकत्ता में रहते थे लेकिन बाबा खुद हैदराबाद सिंध में रहते थे और राजाओं महाराजाओं के पास जाते रहते थे, क्योंकि उनकी रानियां तो दुकान में नहीं आएंगी। तो राजा महाराजा बाबा को बुलाते थे अपने राजमहल में और कहते थे हमारे रानियों के लिए गहने बनाओ, हीरों के गहने। तो इसलिए इतने प्रसिद्ध व्यापारी बन गए। और जितने ही बाबा धनी थे उतने ही बाबा बहुत बड़े दानी थे, उतना ही इनका सुखी परिवार था। 5 बच्चे थे बाबा को, ये लौकिक में उनकी पत्नी जिसका नाम यशोदा था, तो बेटे बहू पोते दोते सब थे। और कैसे एक बहुत कुशल व्यापारी, बहुत सुखी जीवन, बहुत सुखी परिवार और धन धान्य से संपन्न और उतने ही बड़े दानी। जो भी बाबा के सामने आते थे कोई भी हाथ खाली नहीं जाता था, यहाँ तक कि गरीब परिवार के सदस्य आते थे हमारी बेटी की शादी करनी है थोड़ा धन चाहिए, तो बाबा उनको वो भी देते थे ताकि बेटी की शादी कर सके। यानी लौकिक जीवन में तो इसी को बहुत बड़ा पुण्य समझते हैं। बाबा संतों के साथ भी बहुत घूमते थे, साधु संतों के पास जाते थे और बहुत शास्त्र पढ़े थे बाबा ने, बहुत तीर्थ किए बाबा ने, अमरनाथ की भी यात्रा की थी, कोई ऐसा तीर्थ स्थान बाबा ने छोड़ा नहीं था। तो लगभग जब बाबा की आयु 60 वर्ष की हो चली थी 1936 में, बाबा की उम्र लगभग 60 वर्ष की हो चली थी, तब बाबा को कुछ कुछ वैराग्य आने लगा। जीवन की सच्चाई को समझना चाहते थे और उसके कारण कई साधु सन्यासियों के पास गए, सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं इस संसार में, आखिर जीवन का लक्ष्य क्या है, संसार में इतना दुख क्यों है, भगवान कौन है। हालांकि बाबा ने बहुत शास्त्र पढ़े थे, गीता तो बाबा को कंठस्थ थी, रोज सुबह बाबा गीता नहा धोकर के पढ़ते थे, पूरे परिवार को बिठा करके बाबा गीता सुनाते थे, लेकिन अंतर में संतोष नहीं था। वे यही चाहते थे कि सत्यता की हमें पहचान हो और इसके लिए तो वैसे कहा जाता है कि जीवन में एक ही गुरु करना होता है, लेकिन बाबा ने अपने जीवन काल में 12 गुरु किए थे। सबसे यही पूछता था पाप क्या है, पुण्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हम कौन है, कहाँ से आए, कौन है भगवान, क्यों इतना दुख है, ये क्यों भगवान ने सृष्टि बनाई, ऐसे ऐसे प्रश्न करते थे। परंतु जितना जितना उनसे सुनते जाते थे उतना उतना बाबा और ही मूझते जाते थे, क्योंकि सत्य तो फिर भी बहुत बड़ी चीज है, तो कहाँ यहाँ कहाँ उनसे मिलेगा। तो क्या है कि जितना ही बाबा अध्ययन करते थे तप और प्रार्थना वंदना अर्चना सब कुछ करते थे भक्ति, उतना ही ईश्वर से दूर थे। तो सत्य की खोज में थे और परिणाम स्वरूप वैराग्य भी बहुत था। बाबा विष्णु के भक्त थे, विष्णु की बहुत उपासना करते थे। बाबा मुरलियों में सुनाते हैं कि विष्णु का चित्र बाबा पॉकेट में रखते थे, अपने दुकान पर अपने घर में बाबा ने बहुत बड़ा चित्र बनवाया था विष्णु का, तो विष्णु की पूजा करते थे। तो कैसे एक दिन की बात है, जब उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया कि बाबा को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, भव्य साक्षात्कार, जिसमें बाबा ने चार भुजाधारी शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु को अपने सामने खड़े होकर खड़ा हुआ देखा और विष्णु ने उनको वरदान दिया कि मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ और तुम भी मेरे समान हो। अहम चतुर्भुज विष्णु तत्त्वम, तुम भी मेरे जैसे हो। तो बाबा ने देखा कि विष्णु के कई रूप बाबा के सामने एक एक करके आते गए, वही शंख चक्र गदा पद्मधारी स्वरूप, और हर एक स्वरूप ने एक ही वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम। तो ये जब साक्षात्कार बाबा को हुआ तो बाबा को कुछ समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या है, मैं इन जैसे कैसे हूँ, मैं तो इनका भक्त हूँ, क्योंकि उनकी भक्ति करते थे बाबा, तो इसका क्या राज है। तो बाबा ने अपने गुरु से पूछा कि इसका क्या राज है, मैं इन जैसे कैसे हूँ। तो बाबा ने अब प्रश्न पूछा, लेकिन अब गुरु को भी क्या पता कि क्यों ये साक्षात्कार इनको हुआ। तो पर गुरु ने एक बात उनको बहुत अच्छी कही कि हो सकता है भगवान को आपसे कुछ कराना हो, तो क्योंकि विष्णु को ही भगवान मानते थे, तो भगवान को आपसे कुछ कराना है, इसीलिए भगवान ने अपना दर्शन आपको दिया कि तुम भी मेरे जैसे हो, ये अर्थ निकाला गुरु ने। तो बाबा ने सोचा भगवान को मेरे से कुछ कराना है, क्या कराना है, जो कहे भगवान मैं तैयार हूँ, करने के लिए आदेश मिले क्या करना है। तो अब क्या कैसे आदेश मिले, अभी दोबारा तो कहाँ दर्शन होंगे, एक बार तो हो गया। तो गुरु ने उनको सलाह दी कि आप एकांतवास में चले जाओ और एकांतवास में आपको हो सकता है फिर कुछ और अनुभव हो और भगवान से आपको कुछ आदेश मिले कि क्या करना है आगे। तो बाबा हैदराबाद में रहते थे तो बाबा वहां से बनारस चले गए, सब तभी अखंड भारत था, हैदराबाद सिंध भी भारत का हिस्सा था, ये तो बाद में पाकिस्तान हुआ। तो बाबा बनारस चले गए हैदराबाद सिंध से, और वहां उनके एक मित्र की कोठी थी जहां बाबा रोज तपस्या करते थे, मित्र कोठी के बाहर पेड़ के नीचे विष्णु का ही ध्यान करते थे। तो कैसे एक दिन की बात है कि ये भिन्न भिन्न विष्णु के स्वरूप बाबा ने देखे, तो कैसे एक दिन की बात है कि बाबा को इस कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार हुआ, जिसमें बाबा ने देखा तीन रूप से इस कलयुगी दुनिया का विनाश हो रहा है। एक अणुयुद्ध के रूप में हवाई जहाज मंडरा रहे हैं और हवाई जहाज से कोई चीज गिरी और जहां वो गिरी वहां आग लगी, तो ये अणुयुद्ध। फिर दूसरी तरफ बाबा ने देखा ग्रह युद्ध, लोग एक दो को मार रहे हैं, काट रहे हैं, बंदूकें चल रही है, तलवारें चल रही है, हत्याएं हो रही है और खून की नदियां बह रही है, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया दुनिया में, बहुत कुछ देखा बाबा ने। और तीसरी ओर बाबा ने देखा जैसे प्रलय जैसा दृश्य, पांचों ही तत्व इतना कहर मचा रहे हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, कहीं बाढ़ कहीं भूकंप कहीं आंधी कहीं तूफान कहीं क्या कोई क्या, मतलब सारा संसार जैसे धीरे धीरे सब नष्ट होता गया नष्ट होता गया नष्ट होता गया, और बाबा ने देखा जैसे सब खत्म। तो बाबा को तो कुछ समझ में नहीं आया ये मैं क्या देख रहा हूँ, अगर ऐसी दुनिया खत्म हो जाएगी फिर तो भगवान ने दुनिया ही क्यों बनाई, ये उनके मन में प्रश्न उठता था। परंतु किसको कहे किससे समाधान प्राप्त करे, तो बाबा के अंदर में और ही ज्यादा कंफ्यूजन हो गया, मना समझ में कुछ नहीं आया। तो कैसे बाबा को उनसे और भी ज्यादा वैराग हो गया संसार के लिए कि बस अब तो मुझे जीना ही नहीं, क्या रह करके करना है। लेकिन फिर आया कि वो जो मेरे गुरु ने कहा कि भगवान को आपसे कुछ कराना है तो वो क्या कराना है वो भी तो मालूम हो। तो बाबा ने और अपनी तपस्या को तेज किया तो कैसे बाबा को एक दिन परम धाम का साक्षात्कार हुआ, जिसमें बाबा ने देखा अखंड ज्योति का एक महतत्व, सुनहरा लाल प्रकाश और उसमें छोटे 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 सितारे उल्टे झाड़ की तरह है और ऊपर से बड़ा प्रकाश। पर बाबा को कुछ समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या है, लेकिन ये जरूर हुआ कि वो देखने के बाद बाबा को बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा लगा, एक ऐसा परम धाम का अनुभव हुआ। और फिर बाबा ने देखा कि उस धाम से वो छोटे छोटे सितारे धीरे धीरे करके नीचे उतर रहे हैं, और जैसे नीचे उतरते जाते हैं एक एक सितारा एक एक देवी या देवता का रूप धारण करता जा रहा है। और देखते देखते बाबा ने देखा कि जो वो कलराठी जमीन एकदम बंजर हो गई, सब कुछ जलकर राख हो गया, सब खत्म हो गया, नष्ट हो गया, और अचानक धीरे 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 सब बदलता गया बदलता गया बदलता गया। और देखते देखते बाबा ने देखा पांचों ही तत्वों का इतना सुंदर स्वरूप, जिसको सतयुग कहें स्वर्ग कहें। और बाबा को ने अनुभव किया कि जैसे श्री लक्ष्मी श्री नारायण एक सुंदर सोने के हीरों के महल से निकल रहे हैं और बगीचे में टहल रहे हैं, ये बाबा ने अनुभव किया। और एक आवाज सुनी, एक आकाशवाणी सुनी कि लखीराज उठो जागो, ऐसी दुनिया तुमको बनानी है। इस कलयुग के महाविनाश के बाद वो सतयुगी दुनिया आनी है, जिसके लिए आपको निमित्त बनना है, इसलिए उठो जागो और जागो और ऐसी दुनिया बनाने में मेरे साथी बनो, ऐसे कुछ बाबा ने ये आवाज सुनी। तो जैसे बाबा ने सुना तो बाबा को तो समझ में नहीं आया, ऐसी दुनिया मैं बनाऊंगा, मैं कैसे बना सकता हूँ, मेरे पास क्या ताकत है जो मैं ऐसी दुनिया बनाऊंगा, और ये ईश्वरीय शक्ति जो मुझे प्रेरणा भी दे रही है उसके लिए मुझे करना क्या होगा, कैसे बना सकता हूँ। तो ये फिर भगवान से पूछने लगा कि भगवान मुझे वो भी तो बताओ कि मुझे उसके लिए क्या करना होगा, पहले तो मैं कैसे बना सकता हूँ, पर अगर आपकी आपकी प्रेरणा है तो कैसे बनाना है वो भी तो बताओ। लेकिन अब बाबा को फिर दोबारा कब साक्षात्कार हो, कब और प्रेरणा मिले, वो तो बाबा को समझ में नहीं आया। लेकिन बाबा ने ये जरूर महसूस किया कि अगर मैं ऐसे बनारस में हाथ पे हाथ धरकर बैठा रहूंगा तो भगवान का कुछ भी काम नहीं कर सकूंगा, तो मुझे कुछ ठोस कदम उठाना पड़ेगा। तो सबसे पहला कदम उसने ये उठाया कि बनारस से बाबा कलकत्ता गए और अपने पार्टनर को ये सारी बातें बता दी कि ये मुझे अनुभव हुए हैं, साक्षात्कार हुआ है, भगवान का ये आदेश मिला है, अब मैं ये धंधा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बाबा हीरों का धंधा करते थे और हीरों को जैसे बाबा ने देखा तो वो तो बाबा को पत्थर दिखाई देने लगे, जैसे उनकी कोई वैल्यू ही नहीं, तो कहाँ इतना बड़ा व्यापार और कहाँ वो पत्थर दिखाई दे, तो बाबा कैसे व्यापार करेंगे। तो अपने पार्टनर को समझाया और कहा कि देखो मेरा जो हिस्सा है धंधे का वो मैं ले लूंगा और आप ये दुकान संभालो। तो उस समय बाबा को घर से तार आई थी, हैदराबाद सिंध से तार आई थी, बाबा को पोतरा पैदा हुआ था, तो पोतरे की खुशी मनाते तो इसलिए दादा को ग्रैंडफादर को बुलाएंगे। तो अब बाबा को इतने सब अनुभव हुए तो घर वालों को तो पता ही नहीं, क्योंकि बाबा तो बनारस में थे। तो एक तार आई कि जल्दी आओ और पोतरे का जन्मदिन मनाना है, मना ये पोतरे का नामकरण करना है। तो बाबा को तार आई तो तार का जवाब बाबा ने तार में दिया, क्योंकि अपने पार्टनर से समझौता करके अपना हिस्सा तब वो ले रहे थे। तो तार का जवाब तार में क्या दिया कि अल्लाह को अल्लाह मिला, अल्लाह माना खुद, उन अल्लाह को अल्लाह मिला और बे को मिली झूठी बादशाही, बे माना उसका पार्टनर, दुकान उनको दे दी। तो अल्लाह को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अल्लाह को, आपकी जो तार है वो हमको मिली, आई तार अलफ को हुआ रेल का राही। माना ट्रेन से मैं कलकत्ता से हैदराबाद आ रहा हूँ, तो घर वालों ने तो कुछ समझा ही नहीं, अल्लाह को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, क्या मतलब है इसका, अल्लाह कौन बे कौन वो क्या जाने। परंतु जो लास्ट वाक्य था ना, हुआ रेल का राही, आई तार अल्लाह को हुआ रेल का राही, मतलब ट्रेन से मैं आ रहा हूँ हैदराबाद सिंध, ये समझा उन्होंने, और उनको लगा कि अभी वापस आएंगी जल्दी। लेकिन जैसे बाबा वापस पहुंचे तो बिल्कुल साधारण धोती कुर्ता एकदम, यही उनकी ड्रेस थी, नहीं तो राजाओं महाराजाओं से बाबा का उठना बैठना होता था तो बड़ी रॉयल्टी, हाँ ठाट था बाबा का, बहुत बड़ा ठाट, कोट पैंट बाबा पहनते थे, राजाओं महाराजाओं को तो बाबा यहाँ तक भी पार्टी देते थे, लेकिन कभी भी बाबा ने शराब और कोई नॉन वेज ये सब कभी नहीं रखा था हमेशा। तो वो कहते थे राजा लोग बाबा को कि बाबा आपने पार्टी तो दी लेकिन फीकी हो गई है, क्योंकि पीने को नहीं मिला ना, तो पीने को चाहिए, अंग्रेजों को भी पीने को चाहिए, राजाओं महाराजाओं को भी पीने को चाहिए। बाबा कहते थे मैं तुम्हारे लिए अपना धर्म कर्म थोड़ी बर्बाद करूंगा। तो बाबा का वैसे तो राजाओं महाराजाओं के महलों में भी जाना होता था, बहुत विश्वास था राजाओं का, और बाबा को कहते थे राजा महाराजा लोग कि भगवान ने बड़ी भूल की है, राजा तो आपको बनाना चाहिए था लेकिन हमको राजा बना दिया, आपको एक व्यापारी बना दिया। तो बाबा कहते थे भगवान कभी भूल नहीं कर सकता, इसमें भी कोई राज होगा। तो अभी हम जानते हैं क्या राज होगा, कि वही विश्व महाराजन कैसे अंत में साधारण स्वरूप में, लेकिन जो क्वालिफिकेशंस एक सत्युगी महाराजा की चाहिए वे कुछ हद तक ब्रह्मा बाबा में इस अंतिम जन्म में भी थी। तो इसीलिए जितने ही बाबा धनी थे दानी थे उतना ही बाबा को वैराग आ गया, उतना ही सब कुछ एक धक से बाबा ने त्याग कर दिया, और बाबा हैदराबाद में पहुंचे, और कैसे बाबा बिल्कुल दुनिया की निगाहों से दूर रहने लगे, जैसे कि उनका कोई मतलब ही नहीं है संसार से। तो कैसे एक दिन की बात है, बाबा अपने कमरे में बैठे थे और बाबा को अचानक ज्योति का साक्षात्कार हुआ, शिव परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, जिसमें बाबा ने देखा वो प्रकाश बाबा के सामने आया और आता गया नजदीक आता गया और कैसे बाबा ने देखा वो प्रकाश उनमें प्रवेश हो गया। ये बाबा ने देखा वो दिव्य प्रकाश बाबा के अंदर प्रवेश हो गया और बाबा को एक इतनी शक्ति का अनुभव हुआ, जैसे कि कोई बहुत असीम शक्ति मुझे मिल रही है। और फिर जब अपनी आंखें खोली तो उस समय तो मानो प्रकाश का जो अनुभव किया, तो बाबा की लौकिक बहू उस समय बाबा के नजदीक थी, तो वो अपना अनुभव सुनाती थी कि कैसे मैंने बाबा में देखा शिव परमात्मा की प्रवेशता होते हुए, और बाबा के मुख से एक आवाज निकली जो उसकी बहू ने सुनी। वो आवाज क्या थे, वो शब्द थे निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मैं निजानंद रूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ। बस ये शब्द जैसे अंदर से निकलने लगे, बड़ी गहरी आवाज, बाबा की आवाज नहीं थी, जैसे अंदर की गहरी आवाज, यानी शिव परमात्मा ने उनमें प्रवेश किया, अपना परिचय उनके मुख से दिया मैं कौन हूँ। बस फिर तो चमत्कार होने लगे, क्योंकि एक असीम शक्ति का अनुभव हुआ। तो जब बाबा ने जब आंखें खोली तो आंखें भी एकदम लाल लाल सी, और चेहरे पर इतनी चमक, इतनी लाइट चारों ओर। तो बाबा की बहू ने पूछा बाबा से, बाबा आपने क्या अनुभव किया? तो बाबा ने कहा कोई प्रकाश था, कोई शक्ति थी, बहुत तेज, जितनी तेज उतनी ही बड़ी प्यारी, उतनी शीतल, तेज भी थी पर वो तेज कोई जलाने वाला नहीं, अति शीतल स्वरूप, और अब वो शक्ति मुझसे कुछ कार्य कराएगी पर मुझे नहीं मालूम क्या। बस फिर तो क्या हुआ, चमत्कार होने लगे। क्या चमत्कार होने लगे, जो भी बाबा को देखता उस बाबा से उनको श्री कृष्ण का दर्शन होने लगा। बाबा साधारण रूप, हाँ, धोती कुर्ता वाला, और देखते ही देखते जैसे बाबा गुम हो गए और श्री कृष्ण उनके सामने खड़ा है, मोर मुकुटधारी और मुरली बजाता हुआ ऐसे उनके सामने खड़ा है। और बाबा के, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपके सामने ऐसे ही बैठा हूँ, और वो देखते कि खड़ा है जबकि बाबा तो बैठे हैं। और इतना कुछ होने लगा, एक चमत्कार, कि जो बाबा के सामने आते थे उनको बाबा से श्री कृष्ण के दर्शन होते थे। अब इतनी बड़ी न्यूज हो गई जो कि दादा लेखराज एक व्यक्ति हैदराबाद सिंध में है, जो उनके पास जाता है उनको कृष्ण के दर्शन होते, बस सब जगह ये बात फैल गई। और इतने हद तक फैल गई कि लोगों को घर बैठे भी ऐसे अनुभव होने लगे, घर बैठे श्री कृष्ण को देख रहे हैं और श्री कृष्ण की जैसे नजदीक जा रहे हैं तो ब्रह्मा बाबा सामने आ जाता है और कृष्ण पीछे से कहता है मेरे से मिलना है तो इनके पास जाओ। अब सब तो इनको जानते नहीं थे, तो कौन है इनको ढूंढ ढूंढ करके जैसे पहुंच जाते थे बाबा के पास, और जैसे ही बाबा के सामने जाते थे कृष्ण के दर्शन उनको होने लगते थे। उस समय बाबा ओम की ध्वनि करते थे, और जैसे ओम की ध्वनि की और सब जो सामने बैठे थे वो भी ओम करते 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 सब ध्यान में चले जाते थे। कई बार ऐसे भी होता था, बाबा को भी कृष्ण देखते थे या ध्यान में चले जाते थे और कृष्ण की दुनिया देखते थे। तो इस प्रकार के साक्षात्कार चारों तरफ हुए तो एक मानो साक्षात्कारों की लहर हो गई, एक चमत्कार कहो या क्रांति कहो उस समय फैल गई। फिर तो उसके बाद क्या हुआ, अभी कैसे लोग बाबा के पास आने लगे, तो मम्मा जिनका नाम राधे था वो करीब 18 साल की थी उस समय, और उनके लौकिक पिताजी ने शरीर छोड़ा था, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे लेकिन अचानक दिवाला मारा तो उनका हार्ट फेल हो गया था तो उनकी डेथ हो गई थी। तो इनकी जो माँ थी वो बहुत रोती थी, बहुत रोती थी, नेचुरली पति गुजर जाए तो बहुत रोएंगे और बहुत दुखी रहती थी। तो इनकी जो बेटी थी राधे, उनसे ये सहन नहीं हुआ कि मेरी माँ इतना रो रही है, और उस समय तो ऐसा था कि अगर किसी का पति गुजर जाए तो काले काले कपड़े पहनकर बाल खुले रख के स्यापा करते ना, जैसे छाती पीटना, रोते रहना, ये सब करती थी। और ये जो थी कुमारी, ये तो बहुत फैशनेबल थी, बहुत सुंदर भी थी और बहुत अवार्ड लेती थी, गीत में, संगीत में, सब कलाएं थी उसमें अवार्ड लेती थी, मेडल्स लेती थी। तो वे तो मॉडर्न विचारों की, और माँ की ये हालत देख के रहा नहीं गया तो किसी ने उनको कहा कि आप इनको ना बाबा के पास ले जाओ तो वहां उनको कृष्ण के दर्शन होंगे तो उसको बहुत शांति मिलेगी। अब ये जैसे ही माँ को लेकर के आई तो माँ ने जैसे ही बाबा को देखा एकदम से ध्यान में चली गई और उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ और इतना हंसने लगी आई रोती रोती और एकदम हंसने लगी। अब ये भी न्यूज बन गई कि राधे की माँ रोती रोती आई और हंसती हंसती गई, मतलब इस प्रकार न्यूज तो बन जाती है ना, हेडिंग बन जाती है। अब इसी प्रकार दादी प्रकाशमणि, वो करीब 15 साल की थी, उसको सवेरे सवेरे घर में साक्षात्कार हुआ श्री कृष्ण का, और श्री कृष्ण के वैसे पास जा रही है तो श्री कृष्ण गुम होकर के जैसे वो पीछे आगे हो गया और बाबा सामने खड़े हैं और कृष्ण कहता है मेरे से मिलना तो इनके पास जाओ। अब ब्रह्मा बाबा कौन, ये बाबा कौन थे तो पता नहीं था, इनको कभी देखा नहीं था, लेकिन बाबा इनकी जो पिता थे वो बहुत बड़े ज्योतिषी थे तो उनके पिता को मालूम था कि मेरी बेटी ना मीराबाई जैसे बनेगी, यानी अपने जीवन को पवित्र बनाएगी और अपना जीवन भगवान को अर्पित करेगी, ये उनकी जैसे कुंडली में या जन्म पत्री में इसको पता था। तो वैसे भी ये कृष्ण की बहुत भक्ति करती थी, बहुत ज्यादा, गीता भी इनको कंठस्थ थी, हर प्रकार से बहुत पवित्र आत्मा थी, तो पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी, हर प्रकार से बहुत सारे गुण थे पर बहुत सिंपल थी। मम्मा जो थी वो तो बहुत फैशनेबल थी और ये बहुत सिंपल थी, थोड़ी छोटी थी इनसे। तो सवेरे इनको ये साक्षात्कार हुआ लेकिन इसने किसी को बताया नहीं कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ है, दिन में जब स्कूल गए तो स्कूल में इसकी एक सखी ने कहा कि यहाँ एक दादा लेखराज है, उसके पास जो जाता है उनको कृष्ण के दर्शन होते, चलो हम भी चले। जैसे चलो चलो, जैसे कहीं सेल लगती है ना, चलो चलो सेल, चलो कुछ खरीदने, तो ऐसे चलो हम भी चले, हम वहां जो जाता उनको कृष्ण के दर्शन होते। फिर तो इसने कहा मैं अपने पिताजी से पूछूं, तो शाम को पिताजी से इसने नहीं पूछा लेकिन पिता ने इनको कहा कि बेटी यहाँ एक दादा लेखराज है, उनके पास कोई जादू है क्या है, जो उनके पास जाते उनको कृष्ण के दर्शन होते, तुम भी जाके देखो क्या होता है वहाँ। तो उनको अपनी, इनके पिता को अपनी बेटी के प्रति बहुत ही रिस्पेक्ट था, ये जो कहेगी वही ठीक होगा, वही सत्य होगा। तो कैसे अगले दिन अपनी सहेली के साथ जब बाबा के पास गई, तो जैसे ही बाबा के पास पहुंची उसी समय ध्यान में चली गई। मम्मा ध्यान में नहीं गई, पर ये जैसे ही पहुंची ये ध्यान में चली गई, और इसने श्री कृष्ण की दुनिया देखी, श्री कृष्ण के साथ रास कर रही है। अब सत्संग समाप्त हो गया, सब कुछ सब चले गए और ये वहीं बैठी है। फिर जब जैसे ही सत्संग पूरा हुआ तो बना सब चले गए और ये ध्यान से नीचे उतरी, तो बाबा ने इसको बुलवाया अपने पास, कहा कि इनको मेरे पास भेजो। बाबा तो जानते थे ये किसकी बेटी है, लेकिन ये तो नहीं जानते थे ना कि भाई ये बाबा कौन है, पर ये समझा कि भाई इनसे मुझे साक्षात्कार हुआ। तो बाबा उस समय, एक दूसरा भी बाबा के अंदर में बहुत बड़ा प्लान था, ये साक्षात्कारों की तो बात दूसरी, लेकिन उसके पहले बाबा ने एक स्कूल बनवाया था, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई थी जिसमें बच्चों का बोर्डिंग स्कूल बनाया था, और बाबा को उस बोर्डिंग स्कूल में बच्चों की पढ़ाई के लिए ऐसे टीचर्स की जरूरत थी जो अपना जीवन श्री कृष्ण को अर्पित कर सके। तो जैसे ही बाबा ने इनको देखा तो इसको मालूम था बाबा को कि ये जो बच्ची है इसके पिता ने कहा है कि ये इसका जीवन कृष्ण को अर्पित है। तो इसने कहा कि अपने पिता से पूछो कि अगर आपको जीवन श्री कृष्ण को अर्पित करना है तो आप यहाँ आकर के बच्चों को संभालो। तो इसने कहा मैं अपने पिता से पूछूं, तो पिता ने इनको कहा कि हाँ बच्ची तुम्हारा तो जीवन ही श्री कृष्ण को अर्पित है। तो उसने पत्र लिख के दिया कि मैं अपनी बेटी को श्री कृष्ण को अर्पित करता हूँ, क्योंकि बाबा चाहते थे कि जिस बच्चों को पढ़ाए ना वो नौकरी के हिसाब से नहीं पढ़ाए, टीचर को नौकरी करे इस हिसाब से नहीं, लेकिन अपना जीवन कृष्ण को अर्पित करे, ये भावना थी। तो उसने तो लिख के दे दिया। बस अगले दिन दादी प्रकाशमणि, जिनका नाम रमा था, वो फिर स्कूल नहीं गई, बस पूरा हुआ। मम्मा भी जैसे ही आई बस दोनों ही बाबा के पास समर्पित हो गए। अब यहाँ उसी अनुसार एक अलौकिक परिवार तैयार हो गया बाबा का, छोटा सा परिवार जिसमें वो बच्चे भी थे और थोड़ी बड़ी लड़कियां भी थी, सब थे, और मानो परमात्मा ने कैसे कुमारियों को आकर्षित किया। तो ये परमात्मा का आदेश था कि कुमारियां माताएं ये आगे बढ़े, जब ये आगे बढ़ेंगी और इनके अंदर वो शक्ति आएगी तो ये संसार स्वर्ग बनेगा। यत्र नारियस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो शिव परमात्मा का भी आदेश था माताओं बहनों को आगे करो। तो उस समय तो बाबा ने अपनी उनकी जो भी प्रॉपर्टी थी वो सारी चल अचल प्रॉपर्टी पांच बहनों के नाम पर विल कर दी अपनी प्रॉपर्टी, कि आज से यही सब संभालेंगी, और कई समर्पित हो गए। और अभी इतने सारे हो गए तो बाबा, हैदराबाद तो छोटा सा स्थान था, तो बाबा वहां से कराची चले गए, और कराची में फिर और बड़ा आगे आगे बढ़े, और करीब 385 भाई बहनों ने अपना जीवन इसमें समर्पित किया। और उसी समय जैसे बाबा ने, शिव परमात्मा ने इनके इनके द्वारा मानो एक एक प्रतिज्ञा इनसे करवाई। उस प्रतिज्ञा क्या करवाई, इन्होंने सब ने प्रतिज्ञा की कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। तो क्या उस समय तीन क्रांतिकारी बातें हुई। पहली क्रांतिकारी बात थी साक्षात्कारों की, दूसरी क्रांतिकारी बात थी कि कुमारियां, यंग जवान लड़कियां, वो समर्पित हो गई, और दूसरी तीसरी क्रांतिकारी बात थी कि प्रतिज्ञा करवाई हम अपने जीवन को पवित्र योगी बनाएंगे। और फिर कैसे इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया और कराची में ये क्लिफ्टन बीच है, एक सागर का किनारा, जहां ये जाकर के कैसे एक्सरसाइज करती थी, ये शॉर्ट पैंट्स पहनी है। हाँ, तो बिल्कुल जैसे बाबा ने उनको शक्ति अवतार हो तुम, और इन्होंने ये बाल बनाती नहीं थी, बस बाल खुला, कि हम जैसे द्रौपदी ने वायदा किया था ना, जब तक हमको स्वराज्य नहीं मिलेगा तब तक हम चोटी नहीं करेंगे, तो ये बालों से ही वो दुशासन ने दिखाते ना उनको खींचा। तो ये लोग भी ऐसी थी, मानो इतनी शक्ति इनके अंदर आ गई, और ये सागर के किनारे जाके तपस्या भी कर रही है, एक्सरसाइज भी कर रही है, वॉकिंग भी कर रही है सुबह सुबह। तो मानो कराची में 14 साल इन्होंने तपस्या की, और उसके दौरान कैसे एक नई शक्ति इन्होंने प्राप्त की, और 1937 से लेके 1950 तक ये 14 साल कराची में रह करके दुनिया की निगाहों से दूर कैसे तपस्या की, और इन्हीं 14 सालों में खूब साक्षात्कार किए, खूब इन्होंने, मानो कई बार हम दादियों से पूछते थे कि दादी 14 साल आप लोगों ने क्या किया होगा एकदम सब से दूर, तो दादी के 14 साल तो ऐसे बीत गए जैसे 14 महीने 14 दिन, क्योंकि बहुत अनुभव होते थे उस समय, जो बाबा मुरली में कहते ना कि बच्चे जो शुरू में अनुभव किए ना वो फिर अंत में करेंगे, तो बहुत सुंदर अनुभव हुए। दुनिया में तो कितना हाहाकार मचा हुआ था उस समय 1937 से लेके 1950 तक, उसमें तो दूसरा विश्व युद्ध हुआ है विश्व में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक 6 साल तक विश्व युद्ध चला, और उस विश्व युद्ध में लाखों लोग मारे गए, बहुत मारे गए, लेकिन ये संस्था बाबा के बच्चे बिल्कुल जो बाबा कहते हैं बिल्ली के पुंगरे, वो बट्ठे में सुरक्षित रहे, तो बिल्कुल सुरक्षित थे। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा भी इसी दरमियान हुआ 1947 में, तो भी बाबा ने कैसे इनको वहां सुरक्षित रखा। और फिर उसके बाद जब भारत गणतंत्र बना, तो तब फिर शिव बाबा का आदेश मिला 1950 में कि अभी भारत में जाओ, तब तक वो पाकिस्तान बन गया था 47 में, तो और भारत ही विश्व का लाइट हाउस बनेगा, भारत से ही विश्व को शांति का संदेश मिलेगा, भारत ही विश्व गुरु बन के आध्यात्मिकता संसार में फैलाएगा, भारत बहुत ऊंचा था फिर से ऊंचा बनेगा, ये समझो शिव परमात्मा ने उनको ये आदेश दिया। तो 1950 में कैसे ये पाकिस्तान से भारत में आए, और उस समय का जो चीफ मिनिस्टर था उसने बड़ा सहयोग दिया, पूरा जैसे शिप करके दिया जहाज, और अपना सारा सामान लेकर के आए। उसके पहले जो सिंधी लोग सिख लोग जो भी वहां से भागे थे कराची से या पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए थे, वो तो हाथ खाली नंगे पैर बिल्कुल जेब में एक पाई नहीं, अपनी जान बचाने के लिए भागे थे, और यहाँ पर बाबा ने ऐसा किया जो चीफ मिनिस्टर के सहयोग से सब कुछ ले आए। इसमें आपको दादी जानकी कहाँ दिखाई दे रही है, हाँ देखो कितनी छोटी है, तो ये सब देखो, सब बिस्तरा बोरी सब बांधा हुआ है, और अभी जहाज की तैयार की माने इंतजार में है, और ये जहाज वहाँ कराची से प्रस्थान किया और उनको विदाई दी, और कैसे कराची से आबू में आए। तो आबू बहुत दूर नहीं है कराची से, ये पश्चिमी बॉर्डर है भारत का, और यह आप लोग पीस पार्क गए होंगे, तो पीस पार्क में जब जाते हैं तो राइट साइड में बहुत पहाड़ है, बस पहाड़ के पीछे कराची है। तो वहां से जहाज में आए और ओखा बंदरगाह है सौराष्ट्र में, जहां ये उतरे और वहां से आबू में आए। तो ये देखो जहाज में बैठे हैं, बाबा भी बैठे हैं और भी सब बैठे हैं, दादी प्रकाशमणि बाबा की बहुत निकट थी, फिर ओखा बंदरगाह से फिर बाय ट्रेन आबू में आए। ये देखी 14 साल के बाद दुनिया देखी, तो कैसे उत्सुकता दुनिया क्या है ना, तो देखिए उस समय की ट्रेन 1950 की ट्रेन ये सब अभी जो रेलिंग वेलिंग लगते ना ट्रेनों में, अब उस समय कुछ भी नहीं था, ऐसे झांक करके पूरा सिर बाहर निकाल करके देख रहे हैं। और ये आबू रोड स्टेशन पर पहुंचे और ये माउंट आबू चुना, क्योंकि शिव बाबा का आदेश था कि कराची सागर का किनारा है, तो सागर के किनारे से अब एक पहाड़ पर जाओ और पहाड़ से आपको विश्व को शांति देनी है। तो ये आबू का पहाड़ सबसे नजदीक कराची के है और यही पसंद किया। तो फिर कैसे ये आबू रोड स्टेशन पर आए और यहाँ बाबा ने बहुत तपस्या की। पहले एक वो वहाँ एक स्थान था जिसको ब्रिज कोठी कहते हैं, पहले वहाँ आकर के रहे। 1950 से 1955 तक ब्रिज कोठी में रहे, फिर 55 से 58 तक ये क्या नाम कोटा हाउस और ढोलपुर हाउस में रहे। तो क्या ये आबू जो स्थान है ये राजाओं महाराजाओं का स्थान था। राजाएं महाराजाएं जो राजस्थान के हैं वो गर्मी के दिनों में यहाँ आकर के रहते थे, 3 महीना, अप्रैल मई जून 3 महीना। तो इसलिए यहाँ चारों ओर बहुत बड़े महल बने हुए, जयपुर पैलेस, जोधपुर पैलेस, बीकानेर पैलेस, ये सब पैलेसेस बने हुए महल है। जो जब जब भारत स्वतंत्र हुआ, गणतंत्र हुआ, तो सारी राजाई सब प्रजातंत्र में समा गई, राजाई खत्म हो गई। तो इन राजाओं ने क्या किया, ये इन सब महलों को जो आबू में है उनको या तो होटल बना दिया या तो स्कूल बना दिया। बोर्डिंग स्कूल्स हैं आबू में, जैसे देहरादून में ना या बोर्डिंग स्कूल्स, तो ये कई हर हिल स्टेशन पर बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं। तो ये बड़े बड़े महल जो आबू में हैं वहाँ बोर्डिंग स्कूल्स हैं या होटल है। तो पहले तो किराए पर दिए थे, फिर ये होटल और या बोर्डिंग स्कूल बनते गए। तो ये है बाबा कैसे आबू में आने के बाद बाबा ने अपनी तपस्या शुरू की और बाबा मम्मा मिलके कैसे तपस्या कर रहे हैं। पहाड़ों पर जाकर के बाबा तपस्या करते थे, सब आबू के पहाड़ हैं। और तो धीरे धीरे कैसे बाबा की सेवाएं बढ़ी। अब ये सेवाओं कैसे बढ़ी वो यहाँ से बताते हैं कि ये मनोहर इंदिरा दादी हैं जिन्होंने पंजाब में रहकर, हरियाणा करनाल में रह करके बहुत सेवा की। किसने देखा दादी मनोहर दादी को, बहुतों ने देखा होगा। तो मैं इनका मिसाल क्यों देती हूँ, क्योंकि सबसे पहला सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बनी थी दिल्ली में। इनके लौकिक परिवार वाले दिल्ली में रहते थे, तो जैसे परिवार वालों को मालूम पड़ा कि ये जो हमारी बेटियां बहुएं जो भी समर्पित हुई है ये भारत में आ गई है, तो उन्होंने निमंत्रण दिया इनको कि आपने जो 14 साल तपस्या की हमको भी आकर के इसका लाभ दो, क्या अनुभव किया। तो बाबा ने इनको कहा कि जाओ आपका भाई बुला रहा है, आप जाओ। तो ये 1952 में कैसे आबू से दिल्ली गई और दिल्ली में इनके घर में गई जहाँ इनके रिश्तेदार रहते थे। तो ये ओम की ध्वनि बहुत अच्छा करती थी, ओ बहुत लंबा। और जैसे ये ओम की ध्वनि करती थी तो क्या होता था कि जो भी इनके परिवार वाले थे इन मनोहर दादी से देवी का साक्षात्कार करने लगे। देवी 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 आई घर में, देवी आई देवी। तो कई लोगों को पता चल गया कि कोई देवी आई है इनके पास। तो फिर मंदिरों से निमंत्रण मिलने लगे कि आप लोग आकर के यहाँ पर दर्शन दो या यहाँ अनुभव कुछ कराओ, कुछ ज्ञान दो। तो दादी जाती थी मंदिरों में और वहां भाषण करती थी, जैसे ओम की ध्वनि करे फिर वहां भी लोगों को अनुभव होने लगे। तो मंदिर भी छोटे पड़ने लगे क्योंकि बहुत अच्छा ज्ञान देती थी मनोहर दादी। और फिर तो जमुना के किनारे पर गए, वहां करने लगी। तो इतना 1 महीने तक बहुत सेवा की और 1 महीने के बाद कहे अभी तो बस हम जाएंगे वापस सब आबू। तो रिश्ते तो जो लोगों ने जिन्होंने लाभ लिया वो कहे आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, आप यहीं रह जाओ। तो दादी ने कहा यहाँ कैसे रहूंगी, मैं तो जहाँ से आई वापस जाऊंगी। तो बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा अगर वो कहते हैं कि यहाँ रह जाओ तो उनको को एक मकान लेके दो, हम मकान अलग से मकान में रहेंगे और वहाँ ये ज्ञान का प्रसार प्रचार करेंगे और जो आना चाहे वहाँ आवे, क्योंकि घर में कहाँ तक रहेंगे। तो मानो उसके बाद पहला सेवा केंद्र आबू के बाहर 1952 में दिल्ली में खुला, जो पहले कमला नगर था, अभी तो शक्ति नगर ये दिल्ली के। तो मानो कि बाबा की सेवाएं आबू के बाहर 1952 में हुई। फिर वहां से कैसे भाई बहने आबू आते थे, और भी बहनों ने जाकर के सेवाएं की, बेंगलोर गए, बॉम्बे गए, लखनऊ गए, सब जगह गए। और मम्मा और बाबा, मम्मा माना बाबा की अलौकिक बेटी सरस्वती, ये तो आई तो 16-17 साल की थी और बाबा तो 60 साल के थे, लौकिक में कोई संबंध नहीं था, पता है ना। तो कैसे आते ही अपना जीवन समर्पित किया। तो दादी प्रकाशमणि और मम्मा, ये मानो बहुत करीब थे बाबा के। दादी प्रकाशमणि को कहते थे मुन्नी मम्मा, माना 3/4 मदर, तीन हिस्सा मम्मा तो पूरा मम्मा, लेकिन दादी प्रकाशमणि तीन हिस्सा मम्मा। और फिर कैसे मम्मा भी बहुत आगे बढ़ती रही, बहुत तपस्या करती थी मम्मा, लेकिन मम्मा ट्रैवलिंग बहुत करती थी। मम्मा को बाबा कभी कानपुर भेजे, कभी लखनऊ भेजे, यूपी में मम्मा बहुत गई, सब जगह बहुत मम्मा जाती थी। दादी प्रकाशमणि मम्मा के साथ ही होती थी हमेशा। तो यहाँ जहाँ जहाँ आप मम्मा को देखेंगे वहाँ दादी प्रकाशमणि भी जरूर साथ में है। ये मम्मा का यहाँ है, ये लखनऊ में मम्मा गई है, और फिर कानपुर में मम्मा गई, दादी प्रकाशमणि साथ में है। हाँ, पता चला ना दादी प्रकाशमणि जी का। और दादी और दीदी, अभी फिर दीदी मनमोहिनी, जो बाबा जो मम्मा के अव्यक्त होने के बाद दीदी थी, वो मैं आपको बताऊंगी। तो कैसे मम्मा के साथ साथ होते थे दीदी और दादी। और ये कानपुर में मम्मा आई है, सॉरी। और फिर दादी प्रकाशमणि भी मम्मा के साथ बहुत तपस्या करते थे, बिल्कुल योग युक्त स्थिति दोनों की, और बहुत इनसे सेवा हुई। लेकिन मम्मा तो विदेह अवस्था को पाती गई, बहुत न्यारी होती गई। और कैसे बाबा मम्मा ने योग बल से इस यज्ञ को इतना मजबूत बनाया। और 24 जून 1965 को मम्मा ने अपना देह त्याग किया, 48 साल की उम्र में मम्मा ने अपना देह त्याग किया। परंतु बहुत सेवा की, अनहद सेवा की। और उसके बाद दीदी मनमोहिनी ने कारोबार संभाला और बाबा के साथ आबू में रहने लगी, और सारा एडमिनिस्ट्रेशन दीदी मनमोहिनी के हाथ में आ गया। ये भी शुरू में ज्ञान में आई 1936 में, और ये बहुत धनवान घर की थी, बहुत धनी घर की थी। और जैसे ये बाबा के सामने आई, तुरंत इसको भी श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ और झट से अपना जीवन इसमें समर्पित किया था। तो दीदी मनमोहिनी जी, इनका लौकिक में नाम गोपी था, तो गोपी के रूप में इसने बस बाबा को देखते ही इतना ध्यान में चली जाती थी, जो बात मत पूछो। तो मम्मा के अव्यक्त होने के बाद बाबा ने दीदी मनमोहिनी को पूरा एडमिनिस्ट्रेशन दिया और वो संभालती थी। फिर बाबा निकलने लगे, बाबा बाहर जाने लगे, ये बाबा दिल्ली में आए हैं, और ये छोटी छोटी बच्चियां बाबा के सामने कुछ गीत गा रही है। और फिर तो बाबा से मिलने के लिए मधुबन में आते रहे भाई बहने। ये हिस्ट्री हॉल के बाहर बाबा का फोटो है सब बच्चों के साथ, ये जलंधर से ग्रुप आया है जो फोटो निकाला है बाबा के साथ। और फिर तो बहुत परिवार के परिवार बाबा से मिलने के लिए आते रहे। बाबा भी बॉम्बे जाते थे, ये बॉम्बे का फोटो है, बाबा कैसे सबको टोली दे रहे हैं, खड़े होकर के सबको टोली बांट रहे हैं। दादी प्रकाशमणि तब बॉम्बे में रहती थी। ये यहाँ का दृश्य है, हिस्ट्री हॉल का गेट है, और बाबा किसी को छुट्टी दे रहे हैं, बाबा खड़े हैं। और बाबा पत्र भी बहुत लिखते थे, आज भी बाबा ने याद किया ना, जो बच्चों बाबा को पत्र लिखते हैं तो बाबा उनको पत्र का जवाब देते हैं, तो बाबा पत्र लिखते थे। अब कई हमसे पूछते हैं कि बाबा कैसे पत्र लिखते थे, तो मोटी मोटी लाल पेंसिल होती थी और मोटे मोटे अक्षर उर्दू बाबा लिखते थे। तो वो लिखत मैं आपको बताऊं, ये फोटो डाला है लिखत का। तो ये बाबा उर्दू जैसे लिखते थे ना, ऐसे यहाँ से यहाँ। तो ईशु दादी वो उसको फेयर करती थी तो दो लाइनों के बीच में वो हिंदी करती थी, तो कौन पढ़ेगा बाबा की भाषा, तो वो लिखत बाबा ही पढ़ते थे और ईशु दादी पढ़ती थी। तो कैसे ये नलनी बच्ची को पत्र है, नलनी बच्ची जो बॉम्बे में रहती है, नलनी बहन, तो उसको ये पत्र लिखा था। तो उसकी उसका एक सैंपल आपको, तो जैसे नूरे रतन बेटी नलनी प्रति याद प्यार बात समाचार की पत्र पाया हर्षाया बेटी जब नष्टो मोहा, अब बेटी अब नष्टो मोहा, अब जो रेस करनी है विजय माला में पिरोने का, बाप दादा लक्की स्टार्स का शो करना। तो ऐसे बाबा ने उनको कहा कि कैसे भाषण करना सीखो, ये करो वो करो। बाबा पत्रों में बाबा बहुत प्रेरणा देते थे। और ये भी इसका है कि गुलजार बच्ची कैसे भाषण करती है उनको सुनो, फिर रेस करो। रुक्मणी बा दिल्ली में रहती है, आप रुक्मणी बा का भी भाषण सुनो और उससे रेस करो उसका। तो ये सारा है। तो बाबा प्रेरणा देते थे नलनी बच्ची को, ऐसी ये एग्जाम्पल है। लेकिन ऐसे बाबा पत्र लिखते थे, मुझे भी बाबा ने पत्र लिखा था, मेरे पास भी वो पत्र है। मैं 1967 में बॉम्बे में थी, पढ़ाई कर रही थी, तो 67 में इंटर साइंस में थी और मुझे डिसाइड करना था कि क्या लेना है इसके बाद के, क्या सब्जेक्ट लेने हैं। तो मुझे घर में सब कहे कि तुम डॉक्टर बनो, मेडिकल लाइन लो, डॉक्टर बनो। तो बाबा के सामने तो मैं कई बार जाती थी, बाबा के आगे मैंने इंग्लिश में भाषण किया था। तो बाबा का मुझ में बहुत जैसे एक अंदर में आशा थी कि ये बच्ची बहुत सेवा करे। तो जब इंग्लिश में भाषण किया तो बाबा ने मुझे एक दिन कहा, बच्ची तुम इंग्लिश में बहुत होशियार हो, तुम और अच्छा होशियार हो जाओ तो बाबा तुमको विदेश भेजेगा। बाबा विदेश भेजेगा। तो लक्ष्य, मुझे तो कुछ पता नहीं क्या करना है, मैं तो पढ़ ही रही थी। तो 1967 में घर से यही जोर था कि तुमको डॉक्टर बनना है। तो मैंने बाबा को पत्र लिखा, बाबा मैं क्या करूं, घर से बहुत जोर आ रहा है कि तुम मेडिकल लाइन लो, MBBS करो। तो बाबा ने मुझे पत्र लिखा, जवाब लिखा कि बच्ची बाबा की आप में बहुत आश है, बाबा चाहेंगे आप रूहानी डॉक्टर बन करके विश्व की सेवा करो। ये बाबा ने मुझे कहा। तो देखो आज मैं आपके सामने हूँ, रूहानी सेवा कर रहे हैं। अगर कोई वो MBBS करके एक डॉक्टर बन जाती होती, एक छोटा सा क्लिनिक खोल के बैठ जाती होती और क्या करती होती, अभी तो विश्व की सेवा कर रहे हैं। तो ये बाबा का वरदान मिला उसी समय। तो बाबा की आज्ञा हमने मानी। और कैसे, अब घर से तो छुट्टी ना मिले इतनी कि तुम जाके सेंटर पर रहो, तो फिर हमने BSc किया इंटर साइंस के बाद 2 साल। तब 11+2+2 था उस समय। तो फिर तब मैंने BSc किया। और जैसे मैं BSc के लास्ट ईयर में थी, साइंस ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर 69 में थी, तब बाबा अव्यक्त हुए। तो परंतु बाबा, जब बाबा अव्यक्त हुए तो मुझे आया, अरे बाबा तो चले गए, अब बाबा की इच्छा तो मैंने पूरी नहीं की। बाबा कहते विश्व की सेवा करनी है रूहानी डॉक्टर बन के, मैं अभी तक पढ़ाई कर रही हूँ। तो उसके बाद मुझे भी बाबा का बहुत सुंदर अनुभव हुआ, जैसे जैसे बाबा मेरे सामने खड़े हैं और बाबा मुझे कह रहे हैं कि बच्ची मैं गया नहीं हूँ, मैं साथ हूँ और आपको बाबा की आश पूरी करनी है। तो वो भी अच्छा अनुभव है। खैर उसके तो टाइम नहीं है, 1:00। तो फिर ये बाबा की झोपड़ी जो आप देख रहे हैं, जहाँ बाबा बैठ करके पत्र लिखते थे, किसी से मिलते थे, बाबा की झोपड़ी का वातावरण ही कुछ और है। और ये बाबा का हिस्ट्री हॉल, जहाँ बाबा गद्दी पर बैठ करके मुरली चलाते थे, जो आप मुरली हिस्ट्री हॉल में बैठते हैं, एक मम्मा की गद्दी थी, एक बाबा की गद्दी थी, जहाँ त्रिमूर्ति गोला है वहाँ बाबा बैठते थे, और जहाँ झाड़ है वहाँ मम्मा बैठती थी। और बाबा मम्मा के दिनों में तो बीच में भी एक संधि होती थी, तो दूसरा कोई बाबा मम्मा के आने से पहले योग कराता था, तो वो बीच में बैठता था। बाबा मम्मा की संधि पर बाबा मम्मा ही बैठते थे, पर तो वो संधि अभी तक भी है, इसलिए उसको हटाया नहीं है, जैसे का तैसा। तो ये हिस्ट्री हॉल है, इसलिए इसको हिस्ट्री हॉल कहते हैं, क्योंकि बाबा का ही ये यादगार स्थान है, चार धाम। तो इसमें हिस्ट्री हॉल है और बाबा की झोपड़ी है और फिर बाबा का कमरा है और शांति स्तंभ है। तो बाबा यही कहते थे कि बच्चे सबका मालिक एक है, एक को याद करो, एक के पास ही जाना, एक ही तुम्हारा सब कुछ है। तो ये बाबा का कमरा है जहाँ बाबा ने अंत के समय यहीं पर शरीर छोड़ा, यही खटिया है जहाँ पर आप देखते हैं बाबा की खटिया। बाबा बैठे थे, रात्रि के करीब 9:15 थे, बाबा हिस्ट्री हॉल से मुरली चला करके आए। और वैसे हिस्ट्री हॉल में जैसे बाबा थे तो बाबा ने मुरली चलाई और मुरली चला करके बाबा मुरली पूरी करके बाबा दरवाजे तक आए और दरवाजे पर आ करके बाबा झुके, रात के करीब 9:15 थे। और बाबा सबके आगे झुके, हाथ जोड़ा और बाबा ने कहा, बच्चे सदा निराकारी निरंकारी निर्विकारी रहना, अच्छा बच्चों से छुट्टी। ये बाबा ने कहा हिस्ट्री हॉल के दरवाजे पर। तो बच्चों से छुट्टी, तो बाबा कभी छुट्टी नहीं कहते थे, हमेशा गुड नाइट, नमस्ते, ओम शांति, ये तीन शब्द ठीक थे पर छुट्टी माना जा रहे हैं। तो वो बाबा ने उस समय कही थी। और फिर बाबा कमरे में गए और कमरे में पलंग पर जैसे बैठे तो जैसे बाबा को लगा जैसे आत्मा अशरीरी हो रही है। तो दादी प्रकाशमणि जी को संकल्प आया, मैं बाबा से मिलने जाऊं। दादी उस समय यहाँ थी, नहीं तो बॉम्बे में रहती थी दादी प्रकाशमणि। और जैसे ही दादी जी बाबा के सामने गई है तो बाबा पलंग पर बैठे हैं, आंखें बंद, टांगे नीचे और ऐसे बैठे हैं। तो दादी गई बाबा के सामने, बाबा 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 कहा तो पर बाबा की आंखें बंद थी। तो दादी ने बाबा के हाथ पकड़े, बाबा पर बाबा की आंखें बंद। तो जैसे ही हाथ पकड़ा फिर बाबा ने आंखें खोली और आंखें खोली बस उसी घड़ी बाबा की दृष्टि दादी की दृष्टि पर पड़ी, दादी की दृष्टि में और हाथ हाथ में। और जैसे वो एक सेकंड का खेल था, वो दृष्टि और हाथ के द्वारा जैसे बाबा ने सारी अपनी शक्ति विल कर दी दादी प्रकाशमणि जी को, कहा कुछ भी नहीं। लेकिन उसी समय बस हाथ और दृष्टि इसी के द्वारा ही सारी शक्ति विल कर दी और फिर तो बाबा अव्यक्त हो गए। तो 18 जनवरी 1969 को बाबा ने अपना देह त्याग किया और यही शांति स्तंभ जहाँ अंतिम संस्कार किए गए, तो ये भी हमारा या तीर्थ है या चार धाम में से एक धाम है। और हर 18 जनवरी पर हजारों भाई बहने यहाँ आकर के बाबा को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और उस बाबा के अव्यक्त होने से 6 मास पहले ही बाबा कहते रहे, बच्चे तुम्हें शांति स्तंभ की तरह बनना है, जैसे एक प्रकाश स्तंभ होता है चारों ओर प्रकाश फैलाता है, आपको चारों ओर शांति फैलानी है, चारों ओर शक्ति फैलानी है। तो इसलिए चार प्रकार का स्तंभ है, शांति स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, प्रकाश और शक्ति स्तंभ और पवित्रता स्तंभ। ये आपने देखा होगा, सारा पढ़ा होगा। और फिर तो ये चार धाम की यात्रा करने बाबा के बच्चे मधुबन में आते हैं। आप लोग भी भाग भाग के इसलिए आए ना, हाँ, चार धाम की यात्रा ये करें। फिर तो दीदी और दादी, दादी दीदी तो मधुबन में रहती थी और दादी और दीदी ये दो हंसों का जोड़ा था, दो शरीर लेकिन आत्मा एक, ऐसा अनुभव होता था। इन दोनों ने मिलकर के कैसे यज्ञ को संभाला और इस यज्ञ को आगे बढ़ाया और इनकी अवधि में ये संस्था कितनी आगे बढ़ गई, जो विदेशों में सेवाएं हुई, कॉन्फ्रेंसेस हुए, बहुत कुछ हुआ, उसका विस्तार है। परंतु दादी प्रकाशमणि जी मुख्य प्रशासिका और दीदी मनमोहिनी सह मुख्य प्रशासिका के रूप में इस यज्ञ को संभाला। और 69 से लेके 2007 38 साल तक दादी प्रकाशमणि जी ने यज्ञ को चलाया। और कैसे सब दादियों ने मिल करके बाबा का यह कार्य पान का बीड़ा उठाया और यज्ञ को चलाया। फिर तो बाबा के अव्यक्त होने के बाद विदेशों में हमारी ब्रांचेस खुली, और ये विदेशियों का पहला ग्रुप माउंट आबू आया है। ये विदेशी भाई बने, कोई लंदन से, कोई अमेरिका से, कोई अफ्रीका से, कोई कनाडा से, सेंटर्स चारों ओर खुल गए थे। ये 76 में हैं, हम भी यहाँ बैठे हैं, कहीं दिखाई दे राधी रतन मोहिनी देख रहे हैं आप? राधी रतन मोहिनी जी दिखाई दे रहे, उसके पीछे ही मैं हूँ चश्मे वाली तो क्योंकि उसी समय हम विदेश से आए थे 76 में, और ये भी विदेश का ग्रुप ही था, तो मैं ट्रांसलेशन में ही करती थी, फॉरेनर्स की ट्रांसलेशन। अभी भी बाबा अव्यक्त बाप दादा जब मुरली चलाते हैं तो पूरे विश्व में बाबा की मुरली जाती है, तो हम उसी समय हिंदी से इंग्लिश करते हैं और इंग्लिश में सब सुनते हैं, तो फिर वो अपनी भाषा में करते हैं जिस जिस देश की भाषा है, क्योंकि 140 देशों में बाबा के सेंटर्स हैं और सब जगह इंटरनेट के माध्यम से बाबा की मुरली लाइव जाती है। आजकल तो पीएम टीवी में भी जाती है, आप लोग भी देखते होंगे ना, सेंटर्स पर भी आती जाती है। फिर तो 1983 में ये ओम शांति भवन बना, ये भी एक बहुत बड़ा पहाड़ था, और कैसे वहां पर इतना बड़ा भव्य हॉल बना 1983 में, और सबसे पहला हमारा बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस उस ओम शांति भवन में आयोजित हुआ, और ये संत सम्मेलन हुआ, कई हरिद्वार और ऋषिकेश और बनारस से साधु संन्यासी महामंडलेश्वर आए थे दादियों के साथ, का ये फोटो। फिर 1994 में ज्ञान सरोवर बना, ज्ञान सरोवर माउंट आबू में, और ग्लोबल हॉस्पिटल भी 1991 में बना। और फिर तो आज आप लोग जाएंगे ना घूमने के लिए, कल जाना है ना, जिन्होंने माउंट आबू देखने घूमने जाना है हाथ उठाए। अच्छा, तो सब ये भी देखा नहीं है ना, बाकी तो देखा होगा, पुरानों ने तो देखा है, जो पहली बार आए हैं वो देखेंगे। फिर 1995 में ये नीचे शांति वन में डायमंड हॉल बना, 1996 में इसका उद्घाटन हुआ, उस समय इस संस्था की डायमंड जुबली थी 60 साल, इसलिए इस हॉल का नाम रखा डायमंड जुबली हॉल, जिसमें 20,000 भाई बहने बैठ सकते हैं। और फिर तो दादी प्रकाशमणि जी के सानिध्य में ये सब फलीभूत हुआ, और 25 अगस्त 2007 को दादी प्रकाशमणि जी ने शरीर छोड़ा, जिनकी स्मृति में नीचे प्रकाश स्तंभ बनाया है, जहाँ ही दादी जी के पार्थिव देह का अंतिम संस्कार किया गया, और दादी जानकी जी इस समय मुख्य प्रशासिका के रूप में हैं, और नीचे शांति वन में कुमारियों का प्रशिक्षण हो रहा है, और जन समूह को भी दादी जी संबोधित करते हैं, जहाँ 1,00,000 भाई बहने होते हैं, और फिर दादी के साथ सह मुख्य प्रशासिका दादी हृदय मोहिनी जी, दोनों मिलकर के कैसे बाबा का ये कार्य कर रहे हैं। और हर साल अक्टूबर से लेके मार्च तक हम सब अव्यक्त बाप दादा से मिलते हैं, दादी गुलजार के तन में अव्यक्त बाप दादा की पदरामणि होती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।